दौला पुस्तक चौदवी लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोए सौवसाहूणम् सिद्धे विवुद्धसयले अज्जत्तबहित्तबन्धनुम् मुक्के भत्तिये अहम् नमिउम् पुनो पुनो बंधनम ओच्छम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो पांचवा खंड है उसका नाम है वर्गणा खंड, और उसमें भी हम बंधन अनियोग द्वार को देखते हुए चौदहवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 41 पर आ गए हैं, 41। यहाँ हम नो आगम बंध की बात चल रही थी अपनी। देखो पेज नंबर है 37 पर, यानी नो आगम में भी दो प्रकार बताए थे। देखो नहीं, वो तो उसके भी पहले शादी विश्रसाना नो आगम द्रव्य। देखो पेज नंबर 28 से शुरू है ये विषय। आगम द्रव्य बंध में तो हमने देखे थे कि 9 प्रकार के आगम और 8 प्रकार के उपयोग, वो जाननहार परंतु उससे उपयोग से रहित। अब नौ आगम द्रव्य बंध में प्रयोग बंध और विश्रसा बंध देखा था। विश्रसा बंध में सादी विश्रसा और अनादि विश्रसा कहा था। अनादि विश्रसा यानी धर्मास्तिका अधर्मास्तिका आकाश के जो प्रदेश आपस में उसका बंध है। सादी विश्रसा बंध में हमने जो नेचुरली और उसके लिए उन्होंने वो स्निग्धत्व रुक्षत्व के सारे नियम बताए थे, वो सादी बंध बताया गया था। और वो उसके लिए उदाहरण भी लिया था, अभ्रह मेघ संध्या बिजली वगैरह, विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट काल में विशिष्ट संयोग से वो पाए जाते हैं, उसको सादी विश्रसा कहा था। फिर प्रयोग बंध की बात। प्रयोग बंध में दो प्रकार देखे हमने, पेज नंबर 36 लास्ट लाइन, कि कर्मबंध और नो कर्मबंध। हाँ, तो नो कर्मबंध पहले बता रहे हैं। उसमें हमने 5 प्रकार देखे थे, आलापन बंध, अल्लीवन बंध, संश्लेष बंध, शरीर बंध और शरीरी बंध। आलापन माने हमने व्याख्या, अन्य चीज से अन्य चीज को बांधना, रस्सी से कोई चीजें बांध ली हमने या काष्ठ से बांध ली, इस तरह से उसको कहेंगे आलापन बंध। यानी हमने जैसे कागज का गट्ठा किया उसको दोरी से बांध लिया, या अन्य जो किसी चीज को रस्सी वगैरह से जो बांध के तैयार होते हैं उसको, रस्सी लोहा वगैरह से बांधा था। यानी उसमें रथ वगैरह जो देखो ने, जैसे खिलौन से वगैरह तैयार करते हैं, अन्य लकड़ी में खिला ठोक कर ये सब। हाँ, वो तो आलापन था। अल्लीवन में क्या देखना कि जैसे वो तो वो होता है ना, वो जो लेप नहीं, उसमें देखो बांस वगैरह चटाई वगैरह कैसे करते हैं। अभी चटाई में क्या है, अनेक तंतुओं को आपस में गूंथा है, या वस्त्र जो है धागों से बना है, अन्य किसी चीज से उसको बांधा नहीं है। हाँ हाँ, वीविंग जिसको हम कहेंगे, अल्लीवन। हाँ, कहाँ की बात, अपन उसमें अनेक बातें देखने हैं, यानी किसी अन्य चीज से वो बांधा नहीं है। उसके लिए देखो उन्होंने उदाहरण जो दिए ना, हाँ देखो देखो पेज नंबर 40 निकालो। देखो बांस की कमचियों के द्वारा परस्पर बुनकर घर और अवन आदि के ढांकने के लिए जो बनाई जाती है वो कटक चटाई कहलाती है, और वो भीते बनाई जाती है उन्हें कुडू कहते हैं, यानी उसी को आपस में इसे गूंथ कर बनाए थे। हाँ मुझे मालूम है 37 में वहां स्पष्ट नहीं हो रहा है वो क्या कहना चाहते हैं। लेप विशेष से परस्पर संबंध को प्राप्त हुए द्रव्यों का जो होता है वो अल्लीवन बंधक होता है। हाँ परंतु उसको संश्लेष कहा था। देखो रस्सी वरत्रार काष्ठ आदि के बिना तथा अल्लीवन विशेष के बिना जो चिक्कन और अचिक्कन द्रव्यों का अथवा चिक्कन द्रव्यों का परस्पर बंध होता है वह संश्लेष बंध कहलाता है। अल्लीवन में अभी जो वहां उदाहरण दे रहे ना, परस्पर संबंध को प्राप्त होते हैं। लेप यानी वो एक दूसरे पर जैसे ईंटों की रचना की, एक बीच में कोई सीमेंट वगैरह नहीं डालना, केवल बीट एक के ऊपर एक रखकर हमने ये बीट बनाई तो उसको भी अल्लीवन कहेंगे। यानी वो किसी रस्सी वगैरह के बांधे नहीं है, बीच में कुछ लोह वगैरह नहीं डाला, कीले वगैरह नहीं डाली है, बस वो तो चीजें इकट्ठे मिलाने से उनका बंध हुआ है, बस इतना ही लेना है। अभी फॉर एग्जाम्पल चटाई ले लो, वस्त्र ले लो, वो धागो वो नहीं, वो परिभाषा मत पढ़ो आप, यहाँ आना 40 पेज पर जहाँ उन्होंने स्पष्ट स्वयं स्पष्ट किया है उदाहरण देके, वो ज्यादा बैठेगा बराबर। देखो बांस की कमचियों के द्वारा परस्पर बुनकर आप पहली आपने वो देखे हैं कि ये बेत की या जो जिसको कहें केन के चीजें बनाते हैं या जो ऐसे पट्टियां वगैरह कुछ है जाती है वो आपस में गूंथ कर जो बनाई जाती है, जो टोकरी वगैरह बनाते हैं ना फूलों की, वो परड़ी टोकरी कैसे बनाते हैं, तो ये जो है उसको कटक अर्थात चटाई कहते हैं। जिनग्रह घर और अवन की जो भीते बनाई जाती है उन्हें कुड़ू कहते हैं। केवल बुनना ही नहीं, ने अन्य भी चीजें ऐसी जो परस्पर एक में एक रखकर उसकी जो बनाई जाती है उसको भी ले लेना। क्यों देखो चौथी लाइन, क्योंकि वर्ध दर्भ लोह काष्ठ और रस्सी के बंध के बिना परस्पर मिलाने मात्र से ही यह बंध उपलब्ध होता है। अब देखो यह बंध संश्लेष बंध में अंतर्भूत होता है ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि गीली मिट्टी में चिक्कन गुण का अभाव है। गोबर से लेप कर जो पीड़ बनाए जाते हैं वह गोबर पीड़ कहलाते हैं। इनका जो बंध होता है वह भी अल्लीवन बंध है, यानी गोबर यानी वो जो छाना होता है ना उससे भी जो कुछ वो लेपते हैं और उससे जो बनाते हैं वो भी सब इसमें आ जाते हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है ना उसके जो सेना जो उसके जो कहते हैं ना इसे गोल गोल बनाकर उससे भी एक के ऊपर अचकर भी उससे कुछ बातें बनाते हैं, क्योंकि इनके बंध में अपने से भिन्न दर्भादि बंध के कारण हो, यानी वो एक ही चीज लिए उससे भिन्न चीज से उसको चिपकाया नहीं है। देखो जिनग्रह आदि की रक्षा के लिए पार्श्व में जो भीते बनाई जाती है वह प्राकार कहलाते हैं, अथवा पकी हुई ईंटों से जो वरंडा बनाते हैं वे प्राकार कहलाते हैं, यानी बस एक दूसरे के ऊपर रचकर उसके बनाई रचना की है, उसमें बीचे कोई चिकना पदार्थ नहीं डाला हुआ है। अभी उसके आगे देखे 41 पेज पर वहां ज्यादा क्लियर होता है। स्त्रियों के द्वारा देश विशेष में जो पहनी जाती है वह शांतिका कहलाती है, तथा इनका जो तंतु संतान बंध होता है वह अल्लीवन बंध है, यानी धागों इनको परस्पर बुनकर यह तैयार हुआ है। इनमें तंतुओं के सिवा अलग से बंध के कारण नहीं उपलब्ध होते। जैसे पहले हमने दिया देखा था अन्य चीजें, लकड़ियां हैं उसको दरस्सी से बांध दिया था, वो आलापन था, और ये कैसे वो अल्लीवन है, चटाई है, वस्त्र है, अभी कोई भी ऐसी चीजें आप इमेजिन कर सकते, पेपर है, वो उसको परस्पर में हमने गूंथ कर कुछ बना दिया, ये सब इसमें आ जाते हैं। और ऐसे अन्य भी नेत्र पट्टर कपास के सूत से बुने हुए वस्त्रों का ग्रहण करना चाहिए। अभी इसमें अनेक चीजें हम सोच सकते हैं। अब यहां तक तो अपना विषय हुआ था, अब आगे बढ़ना है, क्योंकि हमने आलापन अल्लीवन देखा, अभी संश्लेष शरीर और शरीरी बंध है, इसे तीन देखने अभी। अब उसके लिए 43 नंबर का भी सूत्र पढ़ेंगे। देखो ऊपर 41 जर मुझे अभी एक दिखा, ऊपर 41 में प्राकृत की पहली लाइन में साड़ियाओ नाम, उसको शाटिका कहा, पर साड़िया ने वो साड़ी शब्द मराठी में आता है, ये प्राकृत से ज्यादा डायरेक्ट आया होगा साड़ियाओ। गुजराती में साड़ी कहते हैं, हाँ ये तो प्राकृत में साड़ियाओ शब्द है ना, देखो, और शाटिका उसको संस्कृत में कह दिया बाद में, संस्कृत के बाद आया ना संस्कृत, पहले तो प्राकृत था। देखो अभी आगे बढ़ते भी 43, जो सो संसिले सबंधो नाम तस्य इमो निर्देशो, जहां कठ जदुणम अन्नोन संसिले सिदानम बंधो संभवदि सो सवो संसिले सबंधो नाम, जो संश्लेष बंध है उसका यह निर्देश है। जैसे परस्पर संश्लेष को प्राप्त हुए काष्ठ और लाख का बंध होता है, वह सब संश्लेष बंध है। पहले के जमाने में वो तो लकड़ी को वो लाख से चिपकाते थे, और लाख और उसमें वो जड़ते थे ना कुछ मणि वगैरह भी, जतु लाख को कहते हैं। लाख और काष्ठ के परस्पर संश्लेष से जो बंध होता है वह संश्लेष बंध है। यह बंध अल्लीवन बंध में अंतर्भूत नहीं होता, क्योंकि यहाँ ये पानी से नहीं, हाथों से करो, हाथों से पानी एण ऊपर शब्द है ना, पानी एण जनिदवा भावादो, पानी पानी जो नी होता है उसका अर्थ होता है हाथ, पानी पात्र, पानी ग्रहण, पानी वो जल वाला पानी नहीं चाहिए, हाथ, हाथों से, हाँ पानी, पानी है ना ऊपर शब्द प्राकृत देखें, क्योंकि पानी का अर्थ होता है हाथ। नहीं पानी चाहिए नहीं वहां पर, हाथ चाहिए, नहीं वो हिंदी में पूछ रहे हैं दीर्घ का ह्रस्व करो क्या, वो पानी न नल जिसको कहें ना बाण वाला न चाहिए, और पानी ह्रस्व का अर्थ होता है हाथ, वो पानी पात्र भोजन आपने सुना होगा, चक्र पानी सुना होगा, जिसके हाथ में चक्र होता है उसको चक्र पानी कहते हैं, पानी ग्रहण किया, अच्छा याद आ गए हस्त में अपने पानी ग्रहण कहते हैं शादी को, तो पानी से नहीं हाथों से संयोग को प्राप्त हुए द्रव्य का अभाव है। देखो ये जो हमने अल्लीवन में क्या देखा था, वो चटाई वगैरह बुनी थी हाथों से, वीविंग जिसको कहेंगे, या वस्त्र धागे जो बनाए थे उसको हाथों से उसमें किया था, तो वैसा यहाँ नहीं हो रहा है। झाड़ में लाख लगती है वो भी संश्लेषी है, हाँ लाख यहीं से होते हैं। आलापन बंध में भी अंतर्भूत नहीं होता, क्योंकि इनसे पृथकभूत द्रव्यादि बंध के कारण नहीं पाए जाते हैं, अन्य कोई उसमें बंध के कारण नहीं है, यानी लोहे से या तार से बांधा या धागे से यानी रस्सी से बांधा ऐसा कुछ नहीं है। जतु पद का ग्रहण यहाँ वज्रलेप और मैन आदि चिक्कन द्रव्यों का उपलक्षण है, यानी वो लेप से जो या मेन से जो चिपकाते हैं उसकी बात है यहाँ पर, यानी मेन और अन्य चीज को जो परस्पर बंद होगा उसको कहेंगे हमारी भाषा में। अभी अन्य भी चिकन द्रव्य आजकल तो बहुत उपलब्ध है ना, वृक्ष में ही होती है नहीं, एक्चुअली वो जीव नहीं कहेंगे या उसका हाँ उसमें कोई पैरासाइट्स वगैरह उत्पन्न होकर उसका वो कोई द्रव उससे उत्पन्न हो जाता है, यानी वृक्ष को वो जिसको हम कहते हैं कीड़ लगी है ऐसा इस टाइप का कुछ है, वो घातक समझे ना वज्र, वो लाख से वो वृक्ष का खत्म हो जाता है वो। हाँ देखो जतुपद का ग्रहण वज्रलेप मैन आदि चिक्कन द्रव्यों का उपलक्षण है, इस मेन मेन में वैक्स वैक्स मोम इनका भी यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अब शरीर बंद, जो सो शरीर बंदो नाम सो पंचवियो, ओरालिय शरीर बंदो, वेयुवीय शरीर बंदो, आहार शरीर बंदो, तेया शरीर बंदो, कम्मय शरीर बंदो चेदी। जो शरीर बंद है वह पांच प्रकार का है, औदारिक शरीर बंध, वैक्रिक शरीर बंध, आहारक शरीर बंध, तेजस शरीर बंध और कार्मण शरीर बंध। ये सब जो हम पांच भेद देख रहे थे ना वो किसके, नौकर्म बंध के देख रहे थे है ना। ये प्रयोग बंध के ये सब है, कर्म बंध और नौकर्म बंध प्रयोग बंध में आते हैं सब। हाँ अब देखो अभी उसका अर्थ देखते हैं, लास्ट लाइन पेज नंबर 41 की लास्ट लाइन। इस प्रकार वो प्रकर हुआ प्रकार, पांच प्रकार का ही शरीर बंध होता है क्योंकि इनसे पृथक भूत दूसरा शरीर बंध नहीं उपलब्ध होता। अब एकादि संयोग रूप औदारिक शरीर के बंध विकल्पों को उत्पन्न कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, यानी उनका अपना औदारिक का औदारिक के साथ, औदारिक का कर्म कारमण के साथ, औदारिक का इस तरह से उसकी कॉम्बिनेशंस बताएंगे, या औदारिक तेजस कारमण का तीनों का आपस में। 45 नंबर, ओरालिय ओरालिय शरीर बंधो, औदारिक औदारिक शरीर बंध, औदारिक शरीर नौकर्म स्कंधों का, औदारिक शरीर के जो नौकर्म स्कंद है उनका अन्य औदारिक शरीर नौकर्म स्कंदों के साथ जो बंध होता है वह औदारिक औदारिक शरीर बंध है। इसका अर्थ है ऐसा नहीं लेना कि एक जीव के शरीर का दूसरे जीव के शरीर के साथ, उसकी बात नहीं है ये, तो इस स्कंद के साथ और स्कंद आके जुड़ जाते हैं उसकी बात है यहाँ पर। नए स्कंद आके उसमें उत्पन्न हाँ आएंगे ना, उसका बंद हुआ है। इवन यहाँ देखो देखो धर्म द्रव्य का भी एक प्रदेशों का एक दूसरे के साथ बंद बताया, अभी औदारिक का औदारिक के साथ भी है ना, वो तो सारे पूरा मिलकर बड़ा स्कंद हुआ है, अनेक स्कंदों का मिलकर। इस प्रकार यह एक संयोग से एक ही भंग होता है। अब द्विसंयोग भंग का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, हमारे पास पांच शरीर है तो किसका किसके साथ होगा उसकी कहेंगे, औदारिक का तेजस के साथ, औदारिक का कारमण के साथ, औदारिक का आहार के आहार के साथ, इस तरह से बताएंगे। अभी देखते ओराल ये तेया शरीर बंधो, ये 46 करना, इसको 47 हुआ है। दो बार 47 लिखा गया ऊपर है, औदारिक तेजस शरीर बंध, औदारिक शरीर के पुद्गलों का और तेजस शरीर के पुद्गलों का एक जीव में जो परस्पर बंध होता है वह औदारिक तेजस शरीर बंध है। एक ही जीव में लेना है ना उसके, वैसे आसान है, ये कर्मकांड में भी हमने पढ़ा था ये। ओरालिय कम्मय शरीर बंधो, औदारिक कारमाण शरीर बंध, वो न बराबर करना, बंध। एक जीव में स्थित औदारिक स्कंधों का और कार्मण स्कंधों का जो परस्पर बंध होता है वह औदारिक कार्मण शरीर बंध है। दो दूसरा द्विसंयोगी दूसरा भंग है ये। ऊपर तेज औदारिक तेजस का एक लिखा है, द्विसंयोगी भंग कितने होते हैं औदारिक तेजस का औदारिक कार्मण का, ये दूसरा है। द्विसंयोगी भंग कौन कौन होते हैं उसकी बात है। देखो ये दो लिखा है ना, तो द्विसंयोगी भंग दो बताए हैं। यहाँ कहते हैं औदारिक स्कंधों का वैक्रियक और आहारक शरीर के साथ बंधन नहीं होता। एक जीव के वो शरीर होते हैं, एक जीव के कितने शरीर होते हैं तो हम कहेंगे औदारिक भी होता है वैक्रियक भी होता है, पर वो जो वैक्रियक शरीर नया बनता है उससे जुदा पृथक विक्रिया कीते है तो उसका वो औदारिक शरीर का बंधन नहीं पाया जाता, ये कहना चाहते हैं। तो औदारिक स्कंधों का वैक्रियक और आहारक शरीर के साथ बंधन नहीं होता क्योंकि औदारिक शरीर रूप से परिणत हुए जीव में शेष दो शरीरों का अभाव पाया जाता है। शंकाकार पूछते हैं, इसके वैक्रियक शरीर का अभाव भले ही रहा वे क्योंकि उसका देव और नारकियों के ही अस्तित्व देखा जाता है, किंतु आहारक शरीर तो मनुष्यों के ही होता है, इसलिए औदारिक शरीर के साथ आहारक शरीर का संबंध होना चाहिए। समाधान, नहीं, क्योंकि आहारक शरीर रूप से परिणमन करने वाले जीवों के औदारिक शरीर का उदय नहीं होने से उसके साथ संबंध नहीं होता। हमने वो देखा था ना संघातन परिशातन वगैरह, वो तो तब उसका जो ग्रहण रुकता है उसका आहार का चल रहा है, ऐसे वो बातें देखी थी हमने। ग्रहण होते हैं औदारिक का नहीं हो रहा है। यहाँ लिखा ना आहारक शरीर रूप से परिणमन करने वाले जीवों के औदारिक शरीर का उदय नहीं होना। अभी उसके शरीर नाम कर्म के उदय से वो परमाणु का ग्रहण हो रहा है। देखो देखो आहारक शरीर अलग से बनता है ना, उस समय आहारक शरीर के परमाणु ले रहे हैं
तो वो जीव का औदारिक शरीर के साथ कोई संबंध नहीं।
अरे संबंध कैसा नहीं, जीव उसमें है ना और उसमें भी है, पर देखो जीव उसमें एक है परंतु वो आहारक शरीर औदारिक शरीर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उसका एक बंधन नहीं है। हाँ यहाँ पर बता रहे उसमें बोलो ना, आपके प्रश्न समझ में आए लोगों को।
मेरा ये पूछना है,
हाँ,
कि जो जीव आहारक शरीर से परिणमन कर रहा है,
हाँ, आहारक शरीर का, हाँ,
औदारिक शरीर का उदय नहीं है ऐसा,
हाँ,
यानी औदारिक शरीर का उदय यानी नए परमाणु ग्रहण नहीं करता,
नहीं करेगी अंतर्मूर्त
तो उतने ऐसा है वैसा,
हाँ,
है।
उसमें से छूटते रहेंगे, उसका ग्रहण रुकेगा, हमने देखा था नवीं पुस्तक में, शायद देखा था कृति अनुयोग द्वार में,
यानी एट अ टाइम आहारक शरीर का ही करेगा।
हाँ, क्योंकि देखो हमने देखा ना आहारक शरीर नाम कर्म का उदय है, तो भले उसका नाम आहार वर्गना है परंतु वो जुदी जाति की वर्गना है जिससे आहारक शरीर बनेगा, तो उसका ग्रहण हो रहा है परंतु औदारिक शरीर का केवल छूटना हो रहा है, तभी उसका ग्रहण रुक गया है उतने समय तक।
तो औदारिक आहारक शरीर वापस आता जब तक वो दुबला हो जाएगा।
अरे दुबला काहे का होगा। औदारिक उदय नहीं है, उदय नहीं तो उस संबंधी परमाणु का ग्रहण नहीं हो रहा है। यानी उसके साथ वो शरीर उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं, बस इतनी बात है। इस प्रकार द्विसंयोगी भंग का कथन किया। द्विसंयोगी दो ही हो गए, औदारिक का तेजस के साथ, औदारिक का कारमण के साथ। अब त्रिसंयोगी भंग का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ओरालिय तेया कम्मय शरीर बंधो, औदारिक तेजस कारमण शरीर बंध। एक जीव में निविष्ट हुए औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कारमण शरीर के स्कंधों का जो परस्पर बंध होता है वह औदारिक तेजस कारमण शरीर बंध है। इस प्रकार त्रिसंयोगी एक ही भंग होता है। अब वैक्रियक शरीर के एकादि संयोगी, एकादि ने वैक्रियक का वैक्रियक के साथ, वैक्रियक का तेजस, वैक्रियक का कारमण, भंगों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। वेयुव्य वेयुव्य शरीर बंधो, वैक्रियक वैक्रियक शरीर बंध। वेयुव्य तेया शरीर बंधो, वैक्रियक तेजस शरीर बंध। वेयुव्य कम्मय शरीर बंधो, वैक्रियक कारमण शरीर बंध। वेयुव्य तेया कम्मय शरीर बंधो, वैक्रियक तेजस कारमण शरीर बंध। ये चारों ही सूत्र सुगम है। वो सुरस्व चाहिए, सुगम नहीं, सुगम। अब आहारक शरीर के भंगों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। आहार आहार शरीर बंधो, आहारक आहारक शरीर बंध। आहार तेया शरीर बंधो, आहारक तेजस शरीर बंध। आहार कम्मय शरीर बंधो, आहारक कारमण शरीर बंध। आहार तेया कम्मय शरीर बंधो, आहारक तेजस कारमण शरीर बंध। ये चार सूत्र भी सुगम है। ये औदारिक वैक्रिक और आहारक के साथ अपने अपने तीन तीन हो गए। अब कहते तीन तीन ने सिंगल संयोगी एक हुआ, द्विसंयोगी दो हुए और तीन संयोगी एक हुआ, टोटल चार हुए। अभी 57 नंबर का सूत्र। तेया तेया शरीर बंधो, तेजस तेजस शरीर बंध। तेया शरीर कम्मय शरीर बंधो, तेजस शरीर कारमण शरीर बंध। शंकाकार पूछते हैं शेष भंग यहाँ क्यों नहीं कहे, यानी तेजस और औदारिक, तेजस और वैक्रिक, तेजस और आहारक क्यों नहीं कहे। तो कहते समाधान नहीं, क्योंकि पुनरुक्त दोष का प्रसंग प्राप्त होता है। यानी आहारक और तेजस का बंध कहो या तेजस और आहारक का बंध कहो, बात एक ही है। अब कहते कम्मय कम्मय शरीर बंधो, कारमण कारमण शरीर बंध। अभी तेजस कारमण कह दिया, यहाँ कारमण तेजस भी उल्टा नहीं कहेंगे, वो भी पुनरुक्त हो जाएगा। यहाँ एक ही भंग होता है। शंका, शेष भंग भी होते हैं, फिर वे किस लिए नहीं कहे गए। समाधान, क्योंकि उनका कथन पहले कर आए हैं, जिसको पुनरुक्त दोष होता है फिर वही कहेंगे। तो सो सवो शरीर बंधो नाम, वह सब शरीर बंध है। यह 15 प्रकार का बंध शरीर बंध है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। देखो तीनों के तो चार चार हुए ना, उदारिक के चार, वैक्रिक के चार, आहारक के चार, चतुर्थ 12 तो ये हो गए। तेजस के दो हुए, तेजस तेजस और तेजस कारमण 14, और कारमण का एक। अब शरीरी बंध की बात करेंगे। जो सो शरीरी बंधो नाम सो दुवी हो, साद्य शरीरी बंधो चेव, अनाद्य शरीरी बंधो चेव। जो शरीरी बंध है वह दो प्रकार का है, सादी शरीरी बंध और अनादि शरीरी बंध। इस प्रकार शरीरी बंध दो प्रकार का ही होता है, क्योंकि अन्य प्रकार के शरीरी बंध का होना असंभव है। 45 प्रश्न पराना। जो सो सादी शरीरी बंधो नाम सो जहां शरीर बंधो तहा ने दव्वा, जो सादी शरीरी बंध है वह शरीर बंध के समान जानना चाहिए। शरीरी जीव को कहते हैं, उसका जो औदारिक आदि शरीरों के साथ बंध होता है वह शरीरी बंध है। इसके भंगों का कथन जिस प्रकार शरीर बंध के भंगों का कथन किया है उस प्रकार करना चाहिए। यथा औदारिक शरीर के साथ शरीरी का बंध, वैक्रिक शरीर के साथ शरीरी का बंध, आहारक शरीर के साथ शरीरी का बंध, तेजस शरीर के साथ शरीरी का बंध, कार्मण शरीरी के साथ शरीरी का बंध और शरीरी के साथ शरीर का बंध। शंकाकार पूछते यह छठवां भंग कैसे बन सकता है? समाधान, नहीं क्योंकि कर्म और नो कर्मों का अनादि संबंध होने से मूर्तपने को प्राप्त हुआ है और जिसके घनलोक प्रमाण जीव प्रदेश योग के वश से संकोच और विस्तार धर्म वाले है ऐसे जीव के अवयवों के परतंत्र लक्षण संबंध से छठे भंग की उत्पत्ति होने में कोई विरोध नहीं आता।
समझ नहीं आया अवयव के परतंत्र लक्षण संबंध से।
देखो ये जीव को यहाँ मूर्त कहा, क्यों मूर्त हुआ? क्योंकि कर्म नो कर्म का अनादि संबंध होने से उसको मूर्त कहा। और क्या है जीव का विशेषता? कि गणलोक प्रमाण जीव के प्रदेश वो योग के कारण संकोच विस्तार धर्म वाले होते हैं। ऐसे जो जीव के अवयव है उसके परतंत्र लक्षण संबंध से छठे भंग की उत्पत्ति होने में विरोध नहीं आता। कौन सा छठा बंध कहा उन्होंने?
शरीर
के साथ शरीर का बंध।
शरीर के साथ शरीर का बंध, शरीर का।
एक मिनट, ऊपर क्या लिखा है देखो?
शरीर का बंध
ऊपर कमे से शरीरिणा शरीरस बंधो, शरीर यानी जीव का, जीव का शरीर के साथ बंध। यानी पहले अलग अलग शरीरों की बात की, फिर इन जनरल शरीरी का शरीर के साथ बंध कह दिया, यानी सामान्य से कह दिया उसको। शरीर का साथ, शरीर यानी जीव, सामान्य से शरीर के साथ कह दिया उसको। औदारिक वैकरिक की बात नहीं की उन्होंने। देखो नीचे और भी बता रहे, औदारिक तेजस शरीरों के साथ शरीरी का बंध, औदारिक कार्मण शरीरों के साथ शरीरी का बंध। पहले कैसे बताए थे? सिंगल सिंगल बताए थे, छह भंग तो वहां बताए। अब यहाँ कह रहे द्विसंयोगी और बता रहे, औदारिक तेजस शरीरों के साथ शरीरी का बंध, औदारिक कार्मण शरीरों के साथ शरीरी का बंध, और औदारिक तेजस कार्मण शरीरों के साथ शरीरी का बंध। इस प्रकार औदारिक शरीर की विवक्षा होने पर तीन भंग होते हैं। अब यहाँ औदारिक औदारिक वाला नहीं लिया है, क्योंकि दो शरीरों का शरीरी के साथ, तो दो का कॉम्बिनेशन अलग है, औदारिक तेजस औदारिक कार्मण, और तीन संयोगी वाला औदारिक तेजस कार्मण का शरीरी के साथ। अब वैक्रियक और आहारक शरीरों के इसी प्रकार तीन तीन भंग कहने चाहिए। यानी वो कैसे हो गए? वैक्रियक तेजस का शरीरी के साथ, वैक्रियक कार्मण का शरीरी के साथ, और वैक्रियक तेजस कार्मण का शरीरी के साथ। फिर ऐसे ही आहारक के बारे में, आहारक तेजस आहारक कार्मण और आहारक तेजस कार्मण का शरीरी के साथ। अब कहते हैं तेजस कार्मण शरीरों के साथ शरीरी का बंध। तेजस कार्मण वाली बातें, औदारिक के तीन लिए, वैक्रिक के तीन लिए, आहारक के तीन लिए। अब तेजस कार्मण कॉम्बिनेशन लिया, इन शरीरों के साथ शरीरी का बंध। इस प्रकार तेजस शरीर की विवक्षा होने पर द्विसंयोगी एक ही भंग होता है। अब कार्मान शरीर में द्विसंयोगी भंग नहीं होता, अभी कार्मान अकेला है ना, क्योंकि उसको पहले कॉम्बिनेशन में तो ले लिया था। इस प्रकार ये 16 शरीरी बंध होते हैं, क्योंकि ऊपर हमने 6 देखे थे, अब ये औदारिक के 3, वैकिरेक के 3 और आहारक के 3 और तेजस कार्मान वाला 1, ये 10 और ओरिजिनल 6, टोटल 16 भंग शरीरी के हो जाते हैं। ये तो सादी शरीर बंध में शरीरी बंध में आ गई है। अब अनादि की बात है, जो अनादिय शरीरी बंधो नाम यथा अठन्नम जीव मज्ज पदेशानम अन्नोन पदेश बंधो भवदी सो सवो अनादिय शरीरी बंधो नाम। जो अनादि शरीरी बंध है यानी जीव का, शरीरी का अर्थ जीव, यथा जीव के 8 मध्य प्रदेशों का परस्पर प्रदेश बंध होता है, यह सब अनादि शरीरी बंध है। शंकाकार पूछते हैं, जीव के 8 मध्य प्रदेशों का जो बंध है वह अनादि शरीरी बंध, शरीररी हुआ है, शरीरी बंध है, यह ठीक है, किंतु यह प्रयोग बंध नहीं है, क्योंकि यह स्वाभाविक होता है, क्योंकि प्रयोग बंध के प्रकरण में इसको ले रहे हैं। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि दृष्टांत द्वारा अनादि शरीरी बंध का यहां निर्देश किया है। जिस प्रकार जीव के 8 मध्य प्रदेशों का अनादि बंध होता है, उसी प्रकार शरीर का जो पूर्व काल की मर्यादा से रहित बंध है वह अनादि शरीरी बंध है।
शरीर का है
ऊपर शरीरी का है, वही मुझे जरा देखो, देखो ऊपर प्राकृत में पढ़ते हैं, प्राकृत की तीसरी लाइन जहाँ 58 मिला, जिस प्रकार जीव के 8 मध्य प्रदेशों का 58 जीव मध्य प्रदेशानम अनादियो बंधो तहा शरीरिस जो पूर्व रहित बंधो सो अनादिय शरीरी बंधो। नीचे उसका अर्थ जो लिखा है उसी प्रकार शरीर का, आपके उसमें शरीर का लिखा है कि शरीरी का लिखा है?
शरीर का।
फिर से समाधान की तीसरी लाइन, शरीरी का चाहिए, ऊपर देखो, फिर से पढ़ती हूँ मैं प्राकृत स्पष्टीकरण की तीसरी लाइन, जहाँ 58 जीव मज्ज पदेशान अनादियो बंधो तहा, यानी जिस प्रकार उस प्रकार शरीरिस्स लिखा है ना, शरीरी शब्द है, शरीरिस्स जो पूर्व रहित बंधो सो अनादियो शरीरी बंधोत्ति घेतव्यो, नीचे उसी प्रकार शरीरी का होना चाहिए। शरीरी का चाहिए।
तो जब जीव के प्रदेश घूमते रहते हैं, कोई 8 प्रदेश एक ही जगह स्थित रहते हैं, उनका घूमना नहीं होता?
हाँ, वो स्थगित है कभी संसार अवस्था में, विग्रह गति में सारे चलायमान होते हैं। देखो उनकी ऑर्डर नहीं चेंज होगी, जैसे कोई वस्त्र है उसके तंतुओं के ऑर्डर नहीं चेंज होती है, वो कैसे भी आप घुमाओ उनको ऑर्डर तो वही रहेगी। और वहाँ 8 मध्य प्रदेशों को जो हम स्थिर कहते हैं, तो इस तरह से उनका जो कुछ घूमना वगैरह होता है, जो हम तो ऐसा कि नहीं, इससे जो कुछ उनका जो जैसा घूमना, नहीं केवल इस तरह से घूमना मत लो उसको, जो कोई प्रदेशों का चलायमान होता है वो तो मध्य प्रदेश तो वहीं पर स्थिर है, बाकी सब चलायमान होते हैं, जैसे साइकिल के स्पोक का उसका उदाहरण दिया है। सारे ही चलायमान होते हैं। अभी देहधारी अवस्था में वो फिक्स है और बाकी सारे प्रदेश चलायमान होते हैं, यानी वो आठ प्रदेशों के अंदर बाकी भी अवगाहना प्राप्त हो गया, ऐसा ऐसा जो कुछ हो जाता है वहां पर जीव के, क्योंकि अलग अलग शरीरों के आकार धारण करते हैं और वहां पर जो कुछ हम कहते हैं बैठे बैठे भी कभी डर से या ऐसे प्रदेश अपने सिकुड़ लेते हैं ना, तो वो वही उसका चलायमान होना है। अभी उसके लिए हमने वो बहुत विस्तार से चर्चा की थी उसके शिविर में, आप थी ना वो चारित्रम उपशमना के शिविर में, नहीं थे लक्ष्मी थी ना उपशमना लास्ट वाला, तो क्षपणा वाला हुआ था उसके पहले मेरे ख्याल से फरवरी में हुआ था, वो संध्या बहन आई थी और उनका वो उसका हाँ, क्योंकि वो चौथे दिन हमने वो चर्चा की थी पूरे, यानी उसके सारे रेफरेंस वगैरह दिए थे, क्योंकि आठ प्रदेशों के बारे में बंध नहीं होता ऐसी कुछ प्ररूपना पहले करती थी वो, वही तो उन्होंने कहा बंध नहीं होता है, वो मुक्त है, अनादि से मुक्त है, उसका ध्यान करना चाहिए वगैरह, वो बातें सही ने पारिणामिक भाव उसमें होता है, ये सब बहुत ऐसी गलत प्ररूपना हुई थी, तो वो सब हमने उसका समाधान, वो संध्या बहन भी आई थी उस शिविर में और उसका पूरा समाधान, आप थे ना उस शिविर में, नहीं थे हाँ हाँ वो जल्दी आप चल गए, तो पूरे स्क्रीन पर हमने उसको प्रोजेक्ट करके सबको हाँ, क्योंकि पेन ड्राइव में हमने सब तैयार करके ले गए थे और फिर वो स्क्रीन पर दोनों स्क्रीन पर वहाँ प्रोजेक्ट करके सब लोगों को बताया था, सारे रेफरेंसेस धवला के और अन्य भी सारे पुस्तकों के जीरोक्स करके उसमें वो सब लिए थे स्कैनिंग करके, बहुत चर्चा हुई थी विस्तार से। हाँ संध्या बहन का समाधान हुआ, उन्होंने वो अपनी भूल भी मान्य कर दी और अब वो पहले जहाँ भी वहाँ थे उन्होंने बता दिया कि मैं जो कहती थी वो अभी बात बराबर नहीं है, अब उन्होंने बहुत सारी डीवीडी सीडी भी ली, जीव कांड कर्म कांड वगैरह अभ्यास शुरू किया है, अभी कहते हैं अभी अच्छी बात है ना अगर भूल सुधार लेते हैं कोई, क्योंकि ये प्ररूपना बहुत दिन से बहुत गलत चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, पुरुष और स्त्री से कोई मतलब नहीं है, हर एक का अपना ईगो किसका क्या होता है वो उसका कोई संबंध नहीं है। देखो तत्व है और क्योंकि बहुत बहुत लोग प्रभावित हुए थे उस तत्व से, हाँ व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत होता है, ना ही किसी देश से संबंध है ना कोई स्त्री पुरुष से संबंध है। पता नहीं अभी पुरुषों को पता होगा। नहीं नहीं आप पुरुष है आपको पता होगा कितना अहम होता है आप में, तो अभी नया कोई बखेड़ा खड़ा कर दे। क्योंकि शांति से बैठना अच्छा नहीं लगता ना। देखो क्या कहते हैं, फिर से पढ़ते, ये हमने करेक्शन किया ना, उसी प्रकार शरीरी का जो पूर्व काल की मर्यादा से रहित बंध है वह अनादि शरीरी बंध है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। शंकाकार पूछते वह बंध क्या है, समाधान शरीरी का कर्म और नौकर्म सामान्य के साथ जो बंध है वह अनादि शरीरी बंध है, यानी कौन सा शरीर नया शरीर धारण किया वो नहीं, इन जनरल कर्म का तो अनादि, कर्म का नहीं एक ही कर्म का अनादि से बंध नहीं है, पर कर्म है सच अनादि से है उसके, और नौकर्म में तो तेजस शरीर भी है ही है, अब जो औदारिक शरीर आदि जो अन्य अन्य ग्रहण करते रहते हैं तो उसका बंध भी अनादि से है। अब कहते 64 न शरीर हाँ दीर्घ
शरीर
शरीरी, हाँ देखो शरीरी बंध कहने से उसको रस्व लिया, और शरीरी का जब कहते हैं जब उसको प्रत्यय लगता है तो रस्वरी दीर्घ होता है। देखो पेज नंबर 45 पर नीचे का पैराग्राफ देखो, सेकंड लाइन है ना, शरीरी का बंध, केवल शरीरी बंध लिखना है तो रस्व लिखते हैं, और शरीरी का बंध उसमें दीर्घ हो जाता है, वो इकारांत तो जो शब्द होते हैं का लगा ना वहां दीर्घ हो जाता है, शरीरी का
वो दीर्घ हो
जाता है। तो शरीरी का होता है, जैसे अनेक शब्द ऐसे रस्व होते हैं और फिर उसको प्रत्यय लगने से वो दीर्घ होते हैं। हाँ वो बराबर है, हाँ बराबर है। कहाँ पर? हाँ वो दीर्घ ही करना है, हाँ हाँ दीर्घ करना है। अब ये बंध क्या है पूछते हैं, तो शरीरी का कर्म और नौकर्म सामान्य के साथ जो बंध है वो अनादि शरीरी बंध है। शरीरी केवल के हाँ उसको प्रत्यय नहीं लगा का की वगैरह, तो शरीरी रस्व बरोबर है, शरीरी बंध है। अब हमने ये पांच प्रकार के देखे ना, आलापन अल्लीवन संश्लेष शरीर बंध और शरीरी बंध, ये सब प्रयोग में लिए थे, यानी कर्म बंध और नौकर्म बंध ऐसे दो भेद किए थे हमने। ये सब बंध किसके होते, कर्म और नौ कर्म किसके भेद थे? नौ आगम द्रव्य बंध के। द्रव्य बंध के दो भेद, आगम द्रव्य बंध और नौ आगम द्रव्य बंध। नौ आगम के दो कर्म और नौ कर्म, नौ कर्म में प्रायोगिक और वैश्रेषिक,
नहीं वो दो और उसमें
वैश्रेषिक, वैश्रेषिक में सादि अनादि और प्रायोगिक में ये पांच। और अभी उसकी बात है, ये तो सब नौकर्म की बात हो गई। अब कर्म बंध जो स्थगित कराए थे, जो सो थप्पो कम्म बंधो नाम यथा कम्मेति तहा नेदव्यम, जो कर्म बंध स्थगित कर आए हैं उसे कर्म अनुयोग द्वार के समान जानना चाहिए। यानी कर्म बंध की बात है यहाँ पर, कर्म बंध के 64 भंग जिस प्रकार कर्म अनुयोग द्वार में कहे हैं उसी प्रकार कहने चाहिए। पहले हमने स्पर्श अनुयोग द्वार के बाद कर्म अनुयोग द्वार देखा था, किसमें? अभी 13वीं पुस्तक में, पहला स्पर्श अनुयोग द्वार, फिर कर्म अनुयोग द्वार, फिर प्रकृति अनुयोग द्वार देखा था, है ना? तो वहां ये 64 भंग जिस प्रकार कर्म अनुयोग द्वार में कहे उसी प्रकार कहने चाहिए, इस प्रकार संक्षेप से कथन करने पर बंध अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। यानी आठ कर्मों का जो कुछ बंध है उसकी बात वहां देखी थी हमने, और उसमें भी बात बताई थी कि वेदना की, उसमें हमने बहुत चर्चा की है ना। ये बंध अनुयोग द्वार हुआ, अभी बंधक की बात चलेगी। देखो जरा पेज निकालो, पहला एक नंबर का सूत्र जो है ना हिंदी में देखो, बंधन इस अनुयोग द्वार में, हमारा बंधन अनुयोग द्वार है और बंधन की चार प्रकार से विभाषा है। यानी बंधन में ये चारों बातें अंतर्भूत है, कौन से? बंध जो अभी हमने चर्चा की अभी तक, उसकी नए निक्षेप नए वगैरह सब लगाए, अब कहते बंधक, बाद में बंधनी और बंध विधान होगा। तो बंधक की बात, बंधक में जो हमने वहां इसमें देखा था उसको, किसमें? बंध विचय अनुयोग द्वार में, शायद पहले खुदा बंध में देखा होगा। फिर भी यहाँ जो कुछ बात बताते उसको हम देखेंगे। देखो बंधकान योग द्वारम, मैंने बंधक अनुयोग द्वार, उसका ट्रांसलेशन नहीं किया है यहाँ पर, मैंने हेडिंग का ट्रांसलेशन नहीं किया है। अब जेते बंधगा नाम तेसिम इमो निर्देशो गदी इंदिये काये जोगे वेदे कसाये नाणे संयमे दंसने लेसा भव्य सम्मत सन्नी आहारे चेदी। जो बंधक है उनका यह निर्देश है, गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्यत्व सम्यक्त्व संगी और आहार। यह सूत्र 14 मार्गणा स्थानों का प्ररूपण करता है, अन्यथा बंधक का कथन नहीं बन सकता, क्योंकि बंधकों के भेद बताने हैं तो ये 14 मार्गणाएं बताएं। इन मार्गणा स्थानों का जिस प्रकार क्षुल्लक बंध में कथन किया है उस प्रकार करना चाहिए। क्षुल्लक बंध ने खुद्दा बंधक पुस्तक 7वीं। यानी हर एक मार्गणा लेकर उसमें जीव बंधक है बंधक है बंधक है बस इतना कहेंगे। मार्गणा स्थानों में तो सभी बंधक होंगे केवल ऐसा कहेंगे हम। योग में अगर योग वाले भी है, यानी काय योगी बंधक है, मनोयोगी बंधक है, वचन योगी बंधक है, अयोगी बंधक नहीं है, ऐसा कहना पड़ेगा ना। ख्याल में आई ना, अयोगी में दो बंधक नहीं है कहना पड़ेगा। ऐसे इसमें सब में लगा लेना, कषाय में भी अकषाय जीव कथनचित बंधक है कथनचित बंधक नहीं है, क्योंकि अकषाय में 11, 12, 13 बंधक है, 14 बंधक नहीं है। इस तरह से वो हमने वहां सब बातें देखी थी, वैसे यहाँ पर भी लगाना। देखो आगे बढ़ते, देखो गदियाणु वादेन निरे गदिये नेरैया बंधा तिरिखा बंधा देवा बंधा मनुषा बंधा वी अथि अबंधा वी अथि। मनुष्य में क्या लिखा, बंधक भी है और अबंधक भी है, क्योंकि 14 गुणस्थान वाले भी मनुष्य गति के हैं ना। सिद्धा अबंधा एवं खुद्दा बंध इक्कारस अनुयोग दारमण यवम। देखो एक शब्द में पूरा खुद्दा बंध बता दिया। गति मार्गणा के अनुवाद से नरक गति में नारक जीव बंधक है, तिर्यंच बंधक है, देव बंधक है, बीच में हमारा छपा नहीं है। मयंक भाई आपके उसमें छपा है हाँ। मनुष्य बंधक भी है और अबंधक भी है, दोनों लिए सिद्ध अबंधक है। इस प्रकार यहाँ क्षुल्लक बंधक के 11 अनुयोग द्वार जानने चाहिए, वो पूरे की पूरी पुस्तक यहाँ समझनी चाहिए। एक सूत्र में पूरा बता दिया, अब घर जाके पूरी पुस्तक देख लेना। ये सारे बंधक बताए वहां पर। इस स्थान पर क्षुल्लक बंध के 11 अनियोग द्वारों का कथन करना चाहिए, हमने ग्रंथ के बढ़ जाने के भय से उनका कथन यहाँ नहीं किया है, क्योंकि ये पूरा विषय उन्होंने पहले ही बता दिया था। एवं महादंडया नियोवा, इसी प्रकार महादंडक जानने चाहिए। 11 अनियोग द्वारों का कथन करके अनंतर महादंडकों का भी कथन करना चाहिए, विशेषत यहाँ बंधक का कथन करना है। पहले यह कथन क्षुल्लक बंध में कराए हैं, इसलिए यहाँ उसके अनुसार ही इस कथन के करने की सूचना की है। क्षुल्लक बंध में सर्वप्रथम बंधक के कथन की प्रतिज्ञा की है, अनंतर 14 मार्गणाओं का नाम निर्देश करके उनमें से प्रत्येक मार्गणा में कौन बंधक है और कौन अबंधक है यह जतलाया है। अनंतर एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व आदि 11 अनुयोगों के द्वारा बंधक का कथन करके अंत में महादंडक दिए है, यहाँ भी इसी प्रकार कथन करने से बंधक अनुयोग द्वार समाप्त होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार बंधक यह अनुयोग द्वार समाप्त हुआ। यानी पूरा बंधक अनुयोग द्वार, यहाँ उन्होंने खुद्दा बंध में ये सब कथन आया था, ये जानकर बस इतनी बात की है। बाद में भी अभी बंधनीय की बात चलेगी, तो बंधनीय में वो पुद्गलों का वर्णन आएगा और बंध विधान में पूरा महाबंध आने वाला है। बंध विधान भी यहाँ पूरा नहीं बताने वाले, वो कहेंगे महाबंध में सब बातें की है। देखो ऊपर देखते हेडिंग, बंधनिज्य अनुयोग द्वारम, बंधनीय अनुयोग द्वार है, इसका नाम है बंधनीय। यह अनुयोग द्वार का हेडिंग दिया नहीं है हिंदी में, ऊपर बंधनिज्य अनुयोग द्वारम लिखा है ना, पहली लाइन प्राकृत में, उसका हिंदी हेडिंग नहीं किया उन्होंने। जैसे वहां पर भी लास्ट पेज में भी बंधक अनुयोग द्वारम लिखा था, उसमें बंधक अनुयोग द्वार ऐसा हेडिंग देना चाहिए था, वो भी वहां नहीं लिखा है। अभी हम आगे पढ़ते 68 नंबर का सूत्र, जमतम बंजनिज्जम नाम तस्स इमं अनुगमनम कस्सामो वेदन अप्पा पोगला पोगला खंद समुद्दिठा खंदा वगण समुद्दिठा। जो बंधनीय है उसका इस प्रकार अनुगमन करते हैं, वेदन स्वरूप पुद्गल है, पुद्गल स्कंद स्वरूप है और स्कंद वर्गणा स्वरूप है, वो स्व बराबर लिखना, स्वरूप है। जो वेदे जाते उन्हें वेदन कहते हैं, वेदन अप्पा पुगला लिखा ना, वेदन स्वरूप पुद्गल है। जीव से पृथकभूत बंध योग्य कर्म और नोकर्म स्कंध बंधनीय कहलाते हैं, जो बांधे जाते हैं वो बंधनीय, और बांधने वाला वो बंधक यानी जीव। तो बंधक में 14 मार्गणा की बात बताई है और उसमें बंधक कौन है अबंधक कौन है उसकी चर्चा की। अबंधक में जिस जिस मार्गणा में 14वां गुणस्थान आता है उस सबको अबंधक में डाला। तो भव्य जीव बंधक हो गए कि अबंधक हो गए, दोनों होगी ना, क्योंकि 14वां गुणस्थान आया भव्य में, तो बंधक भी है अबंधक भी ऐसा कहेंगे, इस तरह से हमको सोचना है। हाँ देखो, यानी जीव से पृथक ऐसे जो बंध योग्य कर्म और नौकर्म है उसको बंधनीय कहते, जो बंध योग्य है उसको बंधनीय कहा और जो बांधने वाले हैं उसको बंधक कहा। शंका, वे वेदन रूप कैसे हो सकते हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा वेदना योग्य है उनमें द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा वेदना शब्द की प्रवृत्ति स्वीकार की गई है। यानी वो पुद्गल को ही वेदना स्वरूप कहा, एक्चुअली वेदना योग्य हो जाते हैं और वेदना योग्य सर्वथा वेदना योग्य कोई भी पुद्गल हमने इसका क्या वेदन करेंगे हम, उसकी बात नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा से वो होते हैं, इसलिए पुद्गल को ही वेदन स्वरूप कह दिया। वेदन वेदन पना जिनका आत्मा अर्थात स्वरूप है, आत्मा यानी वो जीव वाला आत्मा वो नहीं लेना, उस रूप जो है कि वेदन पना जिनका स्वरूप है उसको वेदनात्मा कहलाते हैं। वेदन अप्पा लिखा ना, ये पना के लिए आत्म शब्द आया कि वेदन, जैसे हम कहते ना वृद्ध का वृद्धत्व, वृद्धात्मा, तो वेदन पना जिनका आत्मा है अर्थात स्वरूप है वे वेदनात्मा कहलाते हैं। यहाँ इस पद से पुद्गलों का ग्रहण करना चाहिए क्योंकि अन्य कोई पदार्थ बंधनीय नहीं हो सकते, छह द्रव्यों में से अन्य कोई बंधनीय नहीं है। वे बंधनीय पुद्गल स्कंद समुद्दिष्ट अर्थात स्कंद स्वरूप कहे गए हैं क्योंकि स्कंध रूप अनंतानंत परमाणु पुद्गलों के समुदाय रूप समागम से बंध योग्य पुद्गल होते हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये परमाणु परमाणु ऐसे नहीं बनते हैं, परंतु उसका जो समवाय से जो स्कंद होते हैं उनका जीव से बंध होता है। इस पद से एक प्रदेशी दो प्रदेशी आदि वर्गणाओं से पृथकभूत स्कंद नहीं पाए जाते। इस पद से बंधनीय पुद्गल निर्विकल्प होते हैं, इस बात का निषेध किया। निर्विकल्प यानी भेद रहित, यानी सिंगल सिंगल परमाणु आकर जीव से बनते हो गए ये बात नहीं हो सकती। इसलिए बंधनीय का कथन करते समय वर्गणा का कथन नियम से करना चाहिए, अन्यथा 23 प्रकार की वर्गणाओं में ये वर्गणा ही बंध योग्य है, अन्य बंध योग्य नहीं है, यह ज्ञान नहीं हो सकता। उसमें बंध योग्य वर्गणा जो है उसकी बात यहाँ बताएंगे। तो हमने देखा था कि वेदन स्वरूप पुद्गल है, पुद्गल स्कंद स्वरूप है, और ये स्कंद जो है वो वर्गणा स्वरूप है। अब 49 पृष्ठ पर आते हैं। वगणानं अनुगमन ठदाये तथ इमानी अठ अनियोगत दारानी नादौवानी भवन्ति। वगणा वगण दौव समुदाहारो अनंतरोव निधा परम्पोरोव निधा अवहारो जो मध्यम पदमीमांसा अप्पा बहुएत्ति। वर्गणाओं का अनुगमन करते समय ये 8 अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है। वर्गणा वर्गणा द्रव्य समुदाहार अनंतरोपनिधा परम्परोपनिधा अवहार यवमध्य पदमीमांसा और अल्प बहुत्व। अब इन 8 अनुयोग द्वारों की अर्थ प्ररूपणा करते हैं यथा। शंका, यहाँ वर्गणा अनुयोग द्वार की प्ररूपणा किस लिए की है? समाधान, एक परमाणु रूप वर्गणा से लेकर, देखो परमाणु को भी वर्गणा कहा यहाँ पर, एक एक परमाणु की वृद्धि क्रम से महास्कंद तक सब वर्गणाओं की एक श्रेणी है, इस बात का कथन करने के लिए वर्गणा अनुयोग द्वार की प्ररूपणा की है। क्या कहना चाहते हैं? एक सिंगल सिंगल वर्गणा सिंगल सिंगल परमाणु वो एक नंबर की वर्गणा कहेंगे, फिर दो परमाणुओं का स्कंद, तीन परमाणुओं का स्कंद, चार का, एक एक प्रदेश की वृद्धि होते हुए उसको प्रदेश ही कहेंगे हम, महास्कंद तक जो अनंतानंत परमाणुओं का समूह रूप पूरा लोक प्रमाणिक स्कंद है, तो वहां तक सब वर्गणाओं की एक श्रेणी यानी एक सिंगल लाइन में हम उसको लिख सकते हैं। जगन है वो एक वर्गणा का, एक पूरे लोक में फैला है उसी को महास्कंद, एक लाइन यानी वो एक लाइन परमाणु की संख्या की बताना है। हाँ देखो क्या कहते हैं, फिर से इसको पढ़ते हैं। एक परमाणु रूप वर्गणा से लेकर, यहां परमाणु की संख्या को लेना है, एक दो तीन चार कहां तक, श्रेणी यानी एक पंक्ति लिखेंगे हम, हाँ अनंत तक, कौन सा अनंत है? वो महास्कंध वाला अनंत, वहां तक सभी वर्गणाएं एक लाइन में लिख सकते हैं। अभी सिंगल सिंगल परमाणु की वर्गणाएं कितनी होगी? तो अनंत होगी, इस विश्व में दो प्रदेशी अनंत होगी, तीन प्रदेशी अनंत होगी, महास्कंध एक होगा, समझ आती है ना, यथा योग्य जो जितनी है। अभी इसको कहेंगे एक पूरे श्रेणी में लिखेंगे। सभी अनंत हो गए, परंतु वो अनंतों की संख्या भी जुदी जुदी हो, अन्यथा वो यव मध्य नहीं बन सकेगा। अभी आगे बढ़ते, ये सब हम डिटेल में देखने वाले। पहले में पहले एक परमाणु दो परमाणु तीन, जिसको हम एक प्रदेशी दो प्रदेशी ऐसा कहेंगे, एक प्रदेशी अनंत परमाणुओं का स्कंद हो सकता है, उसको नहीं लेना यहाँ। एक अणुक द्व्यणुक त्रियणुक इस तरह से, तो हम एक सिंगल लाइन में लिख सकते सबको। इस बात का कथन करने के लिए वर्गणा अनुयोग द्वार की प्ररूपना की है। शंका, ये वर्गणा अनुयोग द्वार की बात हुई। फिर कहते हैं वर्गणा द्रव्य समुदाहार अनुयोग द्वार किस लिए आया है? ऊपर जो हमने 8 अनुयोग द्वार देखे, तो अभी द्रव्य समुदाहार किस लिए बता रहे हैं? समाधान, पूर्वोक्त वर्गणाओं के पुद्गल क्या समान है या अन्य प्रकार है या अन्य प्रकार नहीं है? कौन वर्गणाएं ध्रुव है, कौन वर्गणाएं अध्रुव है, कौन वर्गणाएं सांतर है और कौन वर्गणाएं निरंतर है? इस प्रकार 14 अनुयोग द्वारों के द्वारा नाना श्रेणीगत और एक श्रेणीगत वर्गणा विशेष का कथन करने के लिए यह अनुयोग द्वार आया है। द्रव्य समुदाहार ने उनकी जो संख्या बताएंगे वर्गणाओं में, किसकी कितनी संख्या है, वो ध्रुव है कि नहीं, वो सभी विस्तार से उसमें वर्णन आ जाएगा। अब तीसरा कौन सा देखा था ऊपर? अनंत रूप निधा। शंका पूछते हैं, अनंत रूप निधा अनुयोग द्वार किस लिए आया है? समाधान, परमाणु द्रव्य वर्गणा से द्विप्रदेशी द्रव्य वर्गणा द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता की अपेक्षा क्या सदृश है या विसदृश है? द्विप्रदेशी द्रव्य वर्गणा से, यानी द्विप्रदेशी वर्गणाएं कितनी है, उससे त्रिप्रदेशी द्रव्य वर्गणा द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता की अपेक्षा क्या सदृश है या विसदृश है? इस प्रकार अनंतर पूर्व पूर्व वर्गणा से, क्योंकि इमीडिएट नेक्स्ट वर्गणा में क्या डिफरेंस होगा, कितने अधिक है क्या हीन है क्या क्या है, तो पूर्व पूर्व वर्गणा से अनंतर उपरिम उपरिम वर्गणा की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कथन करने के लिए यह अनुयोग द्वार आया है। उसी को कहते हैं अनंत रूप निधा। जैसे हमने अनंत रूप निधा बहुत अलग अलग जगह देखी है। अब शंका, परंपरोपनिधा क्यों आया है पूछ रहे। लास्ट लाइन, परंपरोपनिधा अनुयोग द्वार किस लिए आया है? देखो, अभी हमने जो ऊपर 8 नाम देखे ना वर्गणाओं के, वर्गणा वर्गणा द्रव्य समुदाहार अनंत रोपनिधा परंपरोपनिधा वगैरह वगैरह, तो ये एक एक अनुयोग द्वार क्यों आया है ये प्रश्न था। तो वर्गणा, पहले वर्गणा क्यों कहते हैं, तो एक परमाणु फिर द्विअणुक वाला त्रिअणुक वाला चार अणुक वाला स्कंध, ऐसे सब महास्कंध तक के सब एक एक परमाणु से बढ़ते हुए सारे स्कंधों को हम एक लाइन में लिख सकते हैं, इसलिए वर्गणाओं का कथन है। फिर द्रव्य समुदाहार क्यों आया, उनमें संख्या कितनी है, सिंगल परमाणु कितने हैं, द्विअणुक वाले कितने स्कंध है, त्रिअणुक वाले कितने हैं, क्या वो ज्यादा है या कम है, उसकी बात बताएंगे। फिर प्रति, एक एक वर्गणा के प्रति उसका प्रपोर्शन क्या होगा, वो अनंत रूप निधा में बताएंगे। अब परंपरोप निधा क्यों आया है उसकी बात अभी 50 पेज पर बता रहे। समाधान, परमाणु रूप पुद्गल द्रव्य वर्गणा से कितनी दूर जाने पर दूना होता है या द्विगुणाहीन होता है, ऐसा पूछने पर इतना स्थान जाकर दूना या आधा होता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह अनुयोग द्वार आया है। यानी जो सिंगल परमाणु जो है वो वर्गणा ज्यादा है क्या, द्विणुक वाली ज्यादा है कि त्रिणुक अधिक है, तो कितना अधिक प्रति, अगर एक एक वर्गणा के प्रति जो हमने देखा था वो अनंत रूप निधा का, इतने स्थान जाने पर दुगुणा होते हैं और इतने स्थान जाने पर दुगुणा, जिसको हम गुणहानि द्विगुण वृद्धि कहेंगे, तो ये यव मध्य तक तो बढ़ते जाएंगे फिर घटते चले जाएंगे, वो सब बताने वाले, ये सब परंपरोप निधा में आते हैं। फिर शंका, अवहार अनुयोग द्वार किस लिए आया है? अवहार अन्य हमने देखा ना उसका भागार का प्रमाण कैसे निकालना, तो कहते एक एक वर्गणा द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता की अपेक्षा सब वर्गणाओं का कितने वा भाग है, यानी सभी वर्गणा एक परमाणु से लेकर वहां सब वर्गणाएं कितनी है, और फिर एक एक वर्गणा में कितने प्रदेश है, उसके द्रव्य कितने हैं, तो उसकी बात यहाँ समझाने के लिए यह अनुयोग द्वार आया है। अब शंकाकार पूछते यवो मध्य प्ररूपणा किस लिए आई है, बताए ना अवहार फिर यवो मध्य। तो कहते हैं समाधान, विशेष अधिक क्रम से जाती हुई वर्गणाओं का किस स्थान पर प्रदेशों की अपेक्षा यवमध्य होता है अथवा नहीं होता, ऐसा पूछने पर इतना स्थान पर जाकर
ऊपर जाकर
एवं अध्यानम गंतुना, इतना स्थान पर जाकर नहीं, इतने स्थान जाकर चाहिए, उसमें क्या लिखा है? इतना स्थान पर जाकर यानी वो पर्टिकुलर स्थान इतने जाने पर यव मध्य होता है, वो है ऊपर चला गया, इस बात का ज्ञान कराने के लिए अनियोग द्वार आया है। समझ में आती है बात? नहीं इत्यम अध्यानम गंतुना, इतने स्थान जाने पर पर जाकर लिखे ना, इतने स्थान जाकर यानी यव मध्य कितने स्थान जाने पर, कहां पर वो यव मध्य पाया जाता है, यव मध्य में क्या लेना है। देखो यहाँ तो एक एक प्रदेश की वृद्धि वाले जो है सारे वर्गणाएं, परंतु उसमें नंबर ऑफ वर्गणाएं कितनी होगी, सिंगल प्रदेशी कितनी है, द्विप्रदेशी कितनी है, तीन प्रदेशी कितनी है, तो ऐसे बढ़ते 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 कहाँ यव मध्य होता है, फिर घटते घटते क्या होता है, वो सब बातें यहाँ बताएंगे। ये हो गई यव मध्य की बात। अब कहते हैं पदमीमांसा अनुयोग द्वार किस लिए आया है, उसमें आठ अनुयोग द्वार बताए हैं, पदमीमांसा और अल्पबहुत्व। कहते हैं पदमीमांसा किस लिए है, समाधान यानी वो क्या अनुयोग में क्या क्या आने वाला है, इसके हमें थोड़ी अंदाजा बता रहे कि सब वर्गणाओं के उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य आदि पदों की गवेषणा करने के लिए यह अनुयोग द्वार आया है। क्या कहना चाहते, सभी वर्गणाओं का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट क्या होता है, अभी जो जो वर्गणाएं हो, जैसे हमने हमको मालूम है आहार वर्गणा, तो आहार वर्गणा की जो रेंज है कितने परमाणुओं की आहार वर्गणा कहते हैं, तो जघन्य और उत्कृष्ट उसके बाद बताएंगे, जो उत्कृष्ट नहीं वो अनुत्कृष्ट कहेगा, जो जघन्य है वो अजघन्य कहलाएगा, इसलिए उसमें उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य अजघन्य ये पद कहलाएंगे, वो उसमें बताएंगे, क्योंकि ये रेंज है परमाणुओं की रेंज है, तो आहार वर्गणा की रेंज उसका जघन्य ये है, उसका उत्कृष्ट ये है, हर एक वर्गणा का अपना अपना बताएंगे, फिर बीच बीच में वो अग्राह्य वर्गणाएं होगी, तो वो सब विस्तार से समझाएंगे हमें। अब कहते अल्प बहुत्व प्ररूपणा किस लिए आई है, वो आठवां अनुयोग द्वार। कहते 23 वर्गणाओं की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता के अल्प बहुत्व का कथन करने के लिए यह प्ररूपणा पाई जाती है, यानी कौन से कितने हैं, कौन से कम है, जैसे महास्कंद सबसे अल्प एक होगा वगैरह वगैरह, ये बात इसमें अल्प बहुत्व में आ जाएगी। अभी जो हमने ये आठ नाम देखे हैं उसका यहाँ विस्तार से वर्णन चलेगा। देखो अब कहते वग्गणाति तथ्य इमानी वग्गणाए 16 अनुयोग दाराणी वग्गण निक्षेवे वग्गण नये विभाषण दाये, हमेशा हमने यही बात है ना, निक्षेप फिर नये विभाषणता, वग्गण परुवणा वग्गण निरुवणा, परुवणा और निरुवणा अलग लिए, वग्गण धुवा धुवाणुगमो वग्गण सांतर निरंतराणुगमो वग्गण ओज जुम्माणुगमो वग्गण खेत्तानुगमो वग्गण फोसनाणुगमो वग्गण कालानुगमो वग्गण अंतरानुगमो वग्गण भावानुगमो वग्गण वनयनानुगमो वग्गण परिमाणानुगमो वग्गण भागाभागानुगमो वग्गण अप्पा बहुवेत्ति। आप में है क्या पुस्तक में अभी? हाँ अभी हम देखते हैं नीचे 50 नंबर पर नीचे का देख रहे हैं, हम वर्गणा का प्रकरण है उसके विषय में ये 16 अनुयोग द्वार होते हैं, वर्गणा निक्षेप, वर्गणा नय विभाषणता, वर्गणा प्ररूपणा, वर्गणा निरूपणा, वर्गणा ध्रुवा ध्रुवानुगम, वर्गणा सांतर निरंतरानुगम, वर्गणा ओज युगमानुगम, वर्गणा क्षेत्रानुगम, वर्गणा स्पर्शनानुगम, वर्गणा कालानुगम, वर्गणा अंतरानुगम, वर्गणा भावानुगम, वर्गणा उपनयनानुगम, वर्गणा परिमाणानुगम, वर्गणा भागा भागानुगम और वर्गणा अल्पभूतवानुगम, ये 16 हो गए। अभी बताएंगे ना, एक एक को लेंगे, पूरा ही समझाएंगे। अभी 16 के 16 समझाने वाले हैं, वो तो बात करेंगे। अब देखो, इसके पहला कौन सा है, वर्गणा, और उसमें भी वर्गणा निक्षेप है। तो वर्गणा दो प्रकार की है, आभ्यंतर वर्गणा और बाह्य वर्गणा। जो बाह्य वर्गणा है वह 5 शरीरों संबंधी 4 अनुयोग द्वारों के द्वारा आगे कहेंगे। ये 5 शरीरों संबंधी जो है उसको बाह्य वर्गणा कहें, और जो अभ्यंतर वर्गणा है वह 1 श्रेणी और नाना श्रेणी के भेद से 2 प्रकार के हैं। बाह्य वर्गणा शरीर संबंधी और अभ्यंतर वर्गणा में 2, 1 श्रेणी नाना श्रेणी। उनमें से 1 श्रेणी वर्गणा के ये सोलह अनुयोग द्वार ज्ञातव्य है। अब इन 16 अनुयोग द्वारों के द्वारा यथाक्रम से वर्गणाओं का विचार करेंगे। यानी अभ्यंतर वर्गणा में से 1 श्रेणी के भेद वाले जो है उसके ये सारे 16 अनुयोग द्वार है। वग्गण निक्षेवेत्ति 26 है। वग्गण निक्षेवे नाम वग्गणा, ठवण वग्गणा, दव वग्गणा, खेत वग्गणा, काल वग्गणा, भाव वग्गणा चेदी। हमेशा हम नाम स्थापना द्रव्य भाव 4 भेद तो करते ही करते हैं, यहाँ क्षेत्र और काल को भी एक्स्ट्रा बता दिया है। वर्गणा निक्षेप का प्रकरण है। वर्गणा निक्षेप 6 प्रकार का है, नाम वर्गणा, स्थापना वर्गणा, द्रव्य वर्गणा, यहाँ क्षेत्र वर्गणा लिखो पुराने पुस्तकों में, आपके उसमें डाला है क्या, क्षेत्र वर्गणा, काल वर्गणा और भाव वर्गणा। जो निश्चय में रखता है वह निक्षेप है। शंकाकार, हमेशा ये प्रश्नोत्तरी चलती है ना हर बार, वह निक्षेप किस लिए करते हैं? समाधान, प्रकृत का निरूपण करने के लिए, जो हमारा विषय है उसका निरूपण करने के लिए। कहा भी है ऊपर जो गाथा सूत्र है ना, 1 नंबर का, अवगय निवारणठम पयदस्य पर्वणानिमित्तं च संशय विनाशनठम तच्छत्तवधारणठम च। कहा भी है अप्रकृत अर्थ का निराकरण करने के लिए, प्रकृत अर्थ का कथन करने के लिए, संशय का विनाश करने के लिए और तत्वार्थ का निश्चय करने के लिए निक्षेप किया जाता है। प्रत्येक जो पदार्थ है नए निक्षेप से हम जानते हैं, उसका कारण ही हमें वो संशय रहित ज्ञान अच्छी तरह से हो जावे, इसलिए। शंका, यहाँ 6 ही निक्षेप किस लिए किए गए हैं? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि निक्षेप 6 ही होते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं तो हमने 10-10 भी देखे हैं, है ना। बावन नंबर के पृष्ठ पर आते हैं। वर्गणा शब्द नाम वर्गणा है, उसका नाम रख दी ना वर्गणा, वह यह है। इस प्रकार बुद्धि द्वारा वर्गणा रूप से संकल्पित अर्थ स्थापना वर्गणा है। किसी अन्य पदार्थ में हमने ये वर्गणा ऐसे कह दिया, वो स्थापना वर्गणा होगा। द्रव्य वर्गणा 2 प्रकार की, हमेशा ही हम सब निक्षेप लगाते आए हैं, उसी की बात है। यहाँ पर हमने बंधपन द्रव्य बंध कहा था, यहाँ द्रव्य वर्गणा कह रहे हैं। ये द्रव्य वर्गणा 2 प्रकार की है, आगम द्रव्य वर्गणा और नो आगम द्रव्य वर्गणा। अब आगम किसको कहना, आगम द्रव्य वर्गणा, वर्गणा प्रावृत को जानने वाला किंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित जीव आगम द्रव्य वर्गण है, उस जीव को वर्गणा कहा। कैसे? वो उस संबंधी आगम को जानने वाला है, उसमें उपयोग नहीं है, इसलिए द्रव्य वर्गणा कहा। उसमें उपयोग वाला होता तो भाव वर्गणा कहते उसको। नौ आगम द्रव्य वर्गणा तीन प्रकार की है। ये हमेशा जो हम विस्तार से चर्चा करते वही बात है। ज्ञायक शरीर, नौ आगम द्रव्य वर्गणा यानी जानने वाले जीव के शरीर को कहा। भावी, नौ आगम द्रव्य वर्गणा जीव को कहा जो भविष्य में जानने वाला है। और तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य वर्गणा यानी जो जीव भी नहीं उसका शरीर भी नहीं अन्य जो कुछ है। ज्ञायक शरीर और भावी नौ आगम द्रव्य वर्गणाएं सुगम है। अब यह तीसरी जो है तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य वर्गणा दो प्रकार की है, कर्म वर्गणा और नो कर्म वर्गणा। उनमें से आठ प्रकार के कर्म स्कंधों के भेद कर्म वर्गणा है तथा शेष 19 प्रकार की वर्गणाएं नो कर्म वर्गणाएं हैं। एक आकाश प्रदेश प्रमाण अवगाहना से लेकर प्रदेशोत्तर आदि के क्रम से कुछ कम घनलोक तक ये सब क्षेत्र वर्गणाएं हैं। यानी क्षेत्र की अपेक्षा कहना है ना, कर्म द्रव्य की अपेक्षा एक समय अधिक आवली से लेकर तक नहीं शब्द चाहिए वहां, एक समय अधिक आवली से लेकर उत्कृष्ट कर्म स्थिति तक और नो कर्म द्रव्य की अपेक्षा एक समय से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण काल तक ये सब काल वर्गणाएं हैं। यानी द्रव्य कर्म की अपेक्षा से एक समय अधिक आवली से लेकर उत्कृष्ट कर्म स्थिति तक, क्योंकि कोई कर्म बंधा है वो कितने काल तक रहेगा, उदीर्णा की अपेक्षा उसका आबाधा काल आवली है, आवली प्लस एक समय में वो खिरेगा, इसलिए समय प्लस आवली लिया। मिनिमम मैक्सिमम कितने काल तक रहेगा तो कहते कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और नौ कर्म द्रव्य की अपेक्षा एक समय से लेकर, क्योंकि उसमें तो कोई आबाधा नहीं होती, असंख्यात लोक प्रमाण काल तक ये सब काल वर्गणाएं हैं। नौ कर्म द्रव्य की अपेक्षा क्योंकि हमने देखा था वो जो छुट्टे हुए जो औदारिक शरीर के परमाणु भी जो अभी बात आई थी ना उसमें, हाँ असंख्यात लोक प्रमाण काल तक रहते हैं, वही बात यहाँ ली है। ये काल वर्गणा है। भाव वर्गणा दो प्रकार की है, आगम भाव वर्गणा यानी जो द्रव्य निक्षेप के बाद भाव निक्षेप लगाते ना उसकी बात है, आगम भाव वर्गणा और नो आगम भाव वर्गणा। वर्गणा प्रावृत को जानने वाला और वर्तमान में उसके उपयोग से युक्त जीव आगम वर्गणा है, उस जीव को ही आगम वर्गणा कहा। भाव आगम वर्गणा, आगम भाव वर्गणा कहो। औदयिक आदि पांच भावों के जो भेद है वे सब नो आगम भाव वर्गणा है। इस प्रकार वर्गणा निक्षेप अनियोग द्वार समाप्त हुआ। यही रुकेंगे हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनं सदा देव।